نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباع نفسه فمعتقها وهو موبقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ایک نیا ٹاپک انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جس میں فرمایا ایک حدیث ہے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملا المیزان کہ طہارت جو ہے پاکی جسے عربی زبان میں طہارت کہا جاتا ہے یا پاکیزگی جو ہے جسے صفائی کی فارم میں لے لیں یا پیوریفیکیشن کے فارم میں لے لیں لیکن خاص طور سے یہاں طہور طہارت سے مراد ہے یہ جو ہے یہ شطر الایمان ہے ایمان کا شطر یعنی کہ سینہ ہے یا اس کا جز ہے والحمدللہ اور جو الحمدللہ کہتا ہے انسان الحمدللہ کی جو تسبیح ہے وہ میزان کو بھر دیتی ہے تملا المیزان اور اس کے بعد فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ جو یہ دعا ہے یا یہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں جو ہیں یہ بین السماوات والارض پورے آسمانوں اور زمینوں کو اس بھر دیتی ہیں یہ دو تسبیح ہاتھ جو ہمیں بتائی گئی سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ پورے آسمانوں اور زمینوں کو بھر دیتی ہیں اور پھر فرمایا والصلاۃ نور اور جو صلاۃ ہے نماز ہے وہ نور ہے اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے یعنی بالکل برہان کہتے ہیں دلیل کو حجت قائم کرنے کو جیسے کہا جاتا ہے تو صدقہ جو ہے یہ بالکل دلیل ہے اور برہان ہے اور پھر فرمایا والصبر ضیاء کہ جو صبر ہے وہ ضیاء ہے یعنی کہ روشنی ہے اجالا ہے اور آگے فرمایا جو قرآن ہے القرآن وہ حجت لک او علیک یہ قرآن تمہارے اوپر حجت بن جائے گا یا تمہارے لیے حجت بن جائے گا اور آگے فرمایا کل الناس یغدو فباع النفس فمعتقها او موبقها کہ ہر آدمی جو ہے ایوری ہیومن بینگ یہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے اور پھر یا تو اسے نجات دلا دیتا ہے یا اس کو وہ ہلاک کر دیتا ہے اپنی یہ جو نفس ہے ایوری مارننگ دیٹ اے پرسن رائزز فرام اسلیپ سو پھر پورے دن میں وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کے تھرو اس عمل کے ذریعے سے وہ یا تو اپنے آپ کو اٹرنل نجات دلا سکتا ہے یا وہ اپنے آپ کو یہ ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے تو بہرحال بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ مسلم شریف کے اندر جس میں ظاہراً طہارت کے بارے میں پہلے فرمایا پھر نماز پھر صدقہ پھر قرآن ان سب کی اس میں فضیلت اور ان کی اہمیت اور ان کے اوپر ایمفسس بتایا گیا پہلا جو سب سے امپورٹنٹ ایشوز حدیث میں بیان فرمایا وہ فرمایا طہور شطر الایمان یہ جو طہارت ہے یہ شطر الایمان ہے ایمان کا جز ہے ایمان کا پارٹ ہے یعنی طہارت ہی نہیں ہے جس کے اندر تو گویا خدا نہ خواستہ اس بندے میں تو ایمان ہی نہیں ہوا ظاہر ہے جو طہارت پاکی ہے یہ ایک ملوکی یعنی کہ جو ملائکہ ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں اینجلز ہوتے ہیں ان کی ایک صفات میں سے ہے طہارت کا ہونا اور گندگی کا ہونا جو ہے یہ شیاطین وغیرہ کا جنوں وغیرہ کا شیاطین کا اور جو گندی مخلوقات ہیں ان کا ٹھکانہ ہے تو طہارت جو ہے یہ گویا کہ ایمان کے ساتھ ایک لازم اور مظلوم شے ہے تو اسی لیے اس میں فرمایا گیا کہ الطہور شطر الایمان یہ جو طہارت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ظاہر ہے اسے ईमान ही कहा गया। एक दूसरी रिवायत में आता है तहारतु निसफुल ईमान, ये जो तहारत है ये निसफ़ ईमान है, यानी आधा ईमान जो है ये तो सिर्फ टोटल डिपेंड ही इंसान की अपनी तहारत के ऊपर है, कितना पाकीज़ा रहना, कितना साफ़ सुथरा रहना पसंद करता है। तो इससे पता ये चला कि साफ़ सुथरा रहना, अपने आप को पाक रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी शरीयत के अंदर, क्योंकि इसकी ये जो तहारत यानी पाकी है, इसकी सिर्फ यही एक हैसियत नहीं है कि बस नमाज या कुरान पाक की तलावत वगैरह है, या कोई हज उम्रे के लिए गए हैं तवाफ़ करना है, या जो लाजमी इबादात हैं उनके लिए एक लाजमी शर्त होना ही सिर्फ इसकी एक इम्पॉर्टेंस नहीं है कि सिर्फ कुछ नमाज रोज़ा कुछ नमाज है या कुरान पाक पढ़ना है या ऐसी एट्सेट्रा एट्सेट्रा इबादात हैं तो सिर्फ उसी के लिए वुज़ू किया जाए और पाक साफ रहा जाए, नहीं, बल्कि कुरान और हदीस से ये मालूम होता है कि इन इट सेल्फ ये तहारत, ये जो पाकी है इंसान की, ये इन इट सेल्फ ख़ुद भी एक इबादत है और दीन का ये एक अहम हिस्सा है। तभी इसे कहा गया शत्रुल ईमान, ये तो ईमान का हिस्सा है, या निसफुल ईमान, आधा ईमान तो है ही इंसान की अपनी पाकी के अंदर, अपनी तहारत के अंदर। इसीलिए वो सूरह बकरा के अंदर आता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि एक तो अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है अल्लाह सुबहानहू व तआला। युहिब्बुल मुततहिरीन यानी जाहिर है कोई बंदा अगर पाक साफ रहता है तो ये ऑटोमेटिकली एक बात की निशानी है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला इससे मोहब्बत करने वाला है, इसे पसंद करने वाला है। और वो मशहूर जो कुरान सूरह तौबा की आयात हैं, जो कुबा की वालों के जो रहने वालों के हवाले से नाजिल हुई, जिसमें फरमाया गया फ़ी ही रिजाल युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन, के यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा पसंद, प्योरिटी को, पाकी को पसंद करने वाले लोग हैं। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला ऐसे पाक साफ रहने वाले बंदों को खूब पसंद करता है, युहिब्बुल मुततहिरीन। तो बहरहाल इससे इन आयात से यही पता चलता है कि पाक रहना इटसेल्फ एक इबादत है और इटसेल्फ एक पार्ट है हमारे ईमान का, हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का। और जाहिर है इसी हवाले से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने अपनी हुज्जतुल बलागा में जो डिटेल्स बयान फरमाई हैं उसमें यही फरमाया है कि जो पूरे दीन का अगर हम खुलासा देखें, जो क्रक्स है, वो चार डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक तहारत, दूसरा इख़बात, तीसरा समाहत एंड नंबर फोर इज़ अदालत। तो बहरहाल बाकी थर्ड का तो ताल्लुक़ फिर इबादात से, माशरत से और दूसरी चीज़ों से है, लेकिन एक पार्ट पूरी ही शरीयत का वन फोर्थ हिस्सा जो इन्होंने बयान फरमाया वो यही है तहारत। तो इस तहारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एम्फसिस हमें इसीलिए कुरान और हदीस में मिलता भी है, क्योंकि ज़ाहिर है एक सलीमुल फितरत और जो बिल्कुल सही मिजाज का इंसान होगा, जिसका कल्ब जो होगा वो बिल्कुल बहीमत की जो सिफली जो तकाजे हैं उनसे मगलूब और उनमें मशगूल ना हो, एक अच्छाई पसंद इंसान जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर लॉजिकल पर्सन होगा, बिल्कुल अनबायस्ड और बिल्कुल गैर प्रेजडिस तरीके से अपने माइंड को अगर ओपन ब्रॉड माइंडेड सही मायनों में होगा, उसकी सोच अगर प्रेजडिस नहीं होगी या बायस नहीं होगी, तो वो सोचे कि पाकीज़ा रहना उसकी एक नेचुरल सी ऐसी सिफ्त होगी जो वो खुद ऑटोमेटिकली पसंद करेगा। नेचुरली कोई भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ हदस जो है यानी तहारत का जो ऑपोजिट है वो किसी फॉर्म में अगर पेश आता है, कोई बंदा टॉयलेट जाता है तो कज़ाए हाजत वगैरह के लिए या वाइफ से जिमा की वजह से हदस लाहिक हो जाता है, तो बहरहाल उसको वो फौरन इन नापाकियों को, इन हदस वगैरह को दूर करेगा और अपने साथ तहारत को लाजिम करने के लिए वॉश अवे करेगा या वज़ू करेगा या गुसल करेगा, ताकि वो इन जो जानवरों की जो सिफात हैं या जिन्नात या शयातीन की जो गंदगी की, उनको अपने आप से दूर करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये क्वालिटी होगी। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो इसी हुज्जतुल बलागा में ही शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने इसकी तीन डिफरेंट कैटेगरीज फिर की हैं। एक तो नंबर वन इज़ वो तहारत जो यानी ऐसी सूरत में वाज होती है जब गुसल या वज़ू बिल्कुल वाजिब हो जाता है इंसान के ऊपर। दूसरी ऐसी नजासत या बलदी है जिससे जैसे कोई कपड़ों वगैरह पे या किसी जिस्म के हिस्से पे कोई नजस चीज़ लग गई। और फिर थर्ड वो पाकी है जो वैसे बज़ाहिर लाजिम या फ़र्ज में तो नहीं आती, जैसे कि कोई बहुत दिन से नहाया ना हो, गंदगी है, मैल कुचैल है, कपड़े गंदे हैं, इवन दो वो पाक तो हों, लेकिन बहरहाल गंदगी को भी साफ़ सुथरा करना और उसको दूर करना, ये सब की सब कैटेगरीज तहारत के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो बहरहाल इसीलिए इस पाकी को, इस तहारत को बहुत ज़्यादा एम्फसिस के साथ, इम्पोर्टेंस के साथ हमें कुरान और हदीस में मिलता है। और इसीलिए इस हदीस में फरमाया अश्तुहुरु शत्रुल ईमान, कि ये तहारत जो है ये ईमान का हिस्सा है, और यही यह तहारत जो है ये निस्फुल ईमान भी है। दूसरी चीज़ इस हदीस में बयान फरमाई सुबहानअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की जो तस्बीह है, ज़ाहिर है इस यकीन का इजहार और इसकी जो शहादत अदा करना होता है कि अल्लाह की जो मुकद्दस ज़ात हर इस बात से पाक और बरतर है जो उसकी शान उलूहियत के मुनासिब ना हो। और तमहीद ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है, कहने का मतलब है कि इस यकीन का इजहार और शहादत करना कि सारी जो खूबियां और सारे कमालात हैं जिनके बिना पर किसी भी मखलूक या किसी भी तखलीक या किसी भी शय की हम्द व सना की जा सकती है, अल्लाह सुबहान व तआला उन सब से बढ़कर है, और वो सीधी उसकी जो पाकी, उसकी जो अज़मत है, वो सबसे बुलंद बाला है। तो बहरहाल इसीलिए इन तस्बीहों की फजीलत भी बताई इस हदीस में, और यही कुरान पाक में हमें आता है नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, ये ख़ुद फरिश्तों का बयान जो आता है कि वो भी अल्लाह की तस्बीह और हम बयान करते हैं। तो ये बार बार ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए इसका मामूल। फिर थर्ड चीज़ फरमाई सलात नूरुन, जो सलात है ये नूर है। नूर कैसे है, ये ज़ाहिर है इन इट सेल्फ एक अल्लाह का नूर है जो इसे प्रोटेक्ट करने वाला है। जैसे आता है कि इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि जो सलात है वो तन्हा यानी बुराई को, हर बुराई को, मुनकरात को, फहाशी को, इनको रोकती है इंसान के पास आने से। तो ये ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली जो बंदा नमाज का पाबंद होगा उससे ये बुराइयाँ खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएंगी। एक ऐसा नूर अल्लाह की तरफ से उसके उसे प्रोटेक्ट करने लगेगा। और फिर यही कि आखरत की जो मंजिलों में नमाज की उस नूरानियत का जो ज़ुहूर इस तरह होगा कि वहाँ के भी अंधेरों में ये बंदा जो है इस नमाज की रोशनी से, गोया यही नमाज उसके सामने उजाला बनकर नमाजी के साथ होगी। जैसे कि कुरान पाक में आता है नूरहुम यसअ बैना अयदीहिम वबी अयमानिहिम, कि जो अल्लाह के जो नेक और सालेह बंदों के आगे और उनकी राइट यानी दाहिनी जानिब उन आमाल का नूर होता है, जो नमाज के फॉर्म में पढ़ेगा और उसका नूर उससे शामिल होगा, तो ये आखिरत में भी उजाला बन के उनके लिए एक रोशनी गोया होगा। इसीलिए फरमाया सलात नूर। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी हदीस में फरमाया व सदका तो बुरहान, ज़ाहिर एक दलील या बुरहान सदका का ज़ाहिर यही हो सकता है इसका मतलब, कि उस कि बिल्कुल एक खुली वाज़े तौर पर दलील है कि जो बंदा मोमिन या मुस्लिम है अगर दिल में उसके ईमान ना हो तो उसके लिए अपनी जो कमाई का हुई दौलत है उससे सदका करना आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल में नूर ईमान होता है तो फिर ऑटोमेटिकली बंदे के लिए सदका करना, चैरिटी करना, वो खुद ब खुद ज़्यादा आसान होता जाता है। तो बहरहाल ये एक आखिरत में भी उसके लिए दलील होगा, क्योंकि बंदे के सदक़े को उसके ईमान और उसकी जो खुदा परस्ती और निशानी मानकर इसको इनामात से नवाजा जाएगा आखिरत में भी, उसके बदले 10 फोल्ड या 700 फोल्ड और मल्टी फोल्ड उसको इसके इनामात जो अजर मिलेंगे। फिर आगे इसके इसी हदीस में फरमाया गया कि वह सब्र ज़ियाउ, कि सब्र जो है वो रोशनी है। सब्र को, सब्र का कुरान और हदीस की इस्तेलाह में जो मतलब है वो यही है कि अल्लाह के हुक्म के तहत जो नफ्स ख्वाहिशात को दबाना और उसकी राह में तलखियाँ और नागवारियाँ बर्दाश्त करते रहना, इसका नाम सब्र है। तो ये जब इंसान के दिल में आएगा और वो मुश्किलात के ऊपर सब्र करेगा और अल्लाह का हुक्म मानते हुए उससे आगे निकलने की कोशिश करेगा, तो वो ख़ुद ऑटोमेटिकली सब्र वालों में शामिल हो जाएगा। और इसे फरमाया ये ज़िया है, यानी कि रोशनी है। अब सलात भी रोशनी है और सबर को भी रोशनी कहा, लेकिन अरबी ज़बान के अंदर ज़िया उस रोशनी को कहते हैं जो इन इटसेल्फ ख़ुद रोशनी देती है। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह यूनुस के अंदर आता है, हुवल्लज़ी जअल अश्शम्स ज़ियाअ वल क़मर नूरुन, कि जो ज़िया शम्स है यानी सूरज है वो ज़िया है, और जो कमर नूर चाँद है वो नूर है, यानी सूरज क्योंकि इन इटसेल्फ ख़ुद रोशनी देता है, और जो चांद है वो उसके ऊपर रोशनी की रिफ्लेक्शन पड़ती है तो वो उससे ब्यूटिफाई करता है अपने आप को। तो जाहिर है सबर ऐसी चीज़ है जो खुद ब खुद रोशनी देगा और वो रोशनी देने वाला बनेगा, और आगे दूसरों तक जब उसकी रोशनी पहुंचेगी तो दूसरे उससे फ़ायदा हासिल करेंगे और उजाला हासिल करेंगे, और फिर नमाज के ऊपर जब उस सबर करने के बाद रोशनी पहुंचेगी तो नमाज इन इटसेल्फ ऐसा नूर है कि वो खुद ब खुद चमकना शुरू हो जाएगा। फिर फाइनली बताया वल कुरान हुज्जतुल्लका अलैका, कि कुरान जो है ये हुज्जत है तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे ख़िलाफ़। इसे जो पढ़ेगा, समझेगा, सीखने की कोशिश करेगा, इस पे अमल करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ये कुरान हुज्जत होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसकी प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा इसका हक़ अदा ना नहीं करता और इसकी इसे लापरवाही करता है तो फिर यही कुरान अव अलैका इसके ख़िलाफ़ हुज्जत बन सकता है खुदा ना खास्ता। और बहरहाल इस हदीस के एंड में यही कहा गया कि हर इंसान सुबह उठता है इस हाल में कि वो अपने पूरे दिन का फ़ैसला खुद ही करता है, फिर कि चाहे तो इस दिन के ज़रिए से अपनी आखरत, अपनी दुनिया सब बना ले, और चाहे तो अपने सब कुछ बिगाड़ के अपनी गुनाह सब कुछ हलाक कर दे। ये इंसान के अपने हाथों की कमाई है। ज़हर अल फसाद व फिल बर्री वल बहरी बिमा का सबत आई दिन नास, जो कुछ भी फसाद है इस दुनिया और आखरत में, दुनिया जहाँ में, ज़मीनों में, समुंदरों में, जिस जगह भी खुश्की में, तरी में, तो वो इंसान के अपनी हाथों की कमाई है जो कुछ भी है फसाद। बहरहाल तो खैर इन शॉर्ट इस सब का मतलब यही है। इधर सबसे पहले तो तहारत के ऊपर एक एम्फसिस है, क्योंकि तहारत ही वो शय है जो नमाज के लिए भी एक लाजिमी चीज़ है, और इसके बगैर तो गोया नमाज ही का नहीं पढ़ी जा सकती इंसान की। और यहीं तक ही नहीं, फिर इस तहारत हासिल करना इतना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस अगर इंसान नहीं करता और नापाकी की हालत में रहता है तो उसके शदीद कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं। जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़र रहे थे तो आपने फरमाया इन्ना उमा लयुअज़्ज़िबान, कि ये दो कब्रों में जो इसके लोग हैं इन देयर ग्रेव्स, उनको अजाब हो रहा है। और इनमें से किस वजह से अजाब हो रहा है? कोई गुनाह कबीरा की वजह से नहीं, किसी को कत्ल करने की वजह से नहीं, कोई बहुत बड़ा जुर्म करने की वजह से अजाब नहीं हो रहा, बल्कि ला यस्ततीरु मिनल बौल, कि ये पेशाब से यानी कि अपनी पेस से बचता नहीं था, उसका ख्याल नहीं करता था, वॉश अवे नहीं करता था, सही मानों में पाकी हासिल नहीं करता था, सिर्फ इस वजह से इस पर अजाब हो रहा है। और जो दूसरा बंदा था अम्मल आखरु फ़काना यमशी बिन नमीमा, ये चुगलखोर था, बैक बाइटिंग करता था, दूसरों की चुगलियां करता था, इस वजह से। ये दो लोगों का जुर्म क्या था? कोई गुनाह कबीरा जो हमारी लैंग्वेज में समझा जाता है या कहा जाता है, ये जुर्म नहीं था। इन दोनों लोगों पे जो कब्र में अजाब हो रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तहारत नहीं की परवाह नहीं करता था, अपने आप को बाउल वगैरह से नहीं बचाता था, साफ़ सफाई हासिल नहीं करता था, और दूसरा जो बंदे का जुर्म ये था वो चुगलखोर था। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर एक दरख्त की टहनी ली और उस कब्र पे गाड़ दी, और इस वजह से कि शायद अल्लाह पाक इनके अजाब में तख़फ़ीफ़ फरमा दें। लेकिन ज़ाहिर है ये दोनों गुनाह बज़ाहिर देखने में कोई बहुत बड़े गुनाह नहीं थे, लेकिन कब्र का अजाब होने का दलील बनना ये इन दोनों के लिए, ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत से पता चलता है। इसमें सिर्फ तहारत ही एक ऐसी शय थी जो जिसकी वजह से वो अजाब कब्र का मुस्तहिक हो गया पहला बंदा। और ज़ाहिर है इस दूसरी जगह पर आता है इस्तंज़ाहु अनिल बौली फ़अन्नहु आम्मतुम मिन अज़ाबिल कब्र मिन्हु, के बाउल वगैरह से बचो, बाउल कहा जाता है पेशाब को, या जिसे पिस कहा जाता है या यूरिन कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आम तौर पे उससे बचने का मामूल अगर किसी का नहीं है तो वो खुदा ना खास्ता बड़ी डेंजरस बात हो जाएगी इसके मुताबिक। तो इसीलिए उसे सही तरह से वॉश अवे करना, पाकी सफाई हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर इसी तरह चुगलखोरी के लिए, क्योंकि सूरह कलम के अंदर आता है वला तो कल्लाफ महीन हम्मा जिम्मशाह बिन अमीम, कि ऐसे बंदे की तो बात भी ना मानो जो झूठ बोलने वाला है, बेबाक बेतहाशा कस्में खाने का आदि है, और ऐब चीनी या चुगलखोरी करना जिसका मशगला है, जो बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग कर रहा है, दूसरों की चुगलखोरी कर रहा है, हम्मा जिम्मशाह बिन अमीम, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहो, इनकी बात ना मानो। और यही वो दूसरा बंदा था जिसके लिए इस कब्र में भी अज़ाब हो रहा था। तो अल्लाह पाक हमें इन तमाम मामलात से की समझने की, इन पे अमल करने की कोशिश अता फरमाए, और ख़ास तौर से यहाँ जो पता चलता है तो तहारत हासिल करने के लिए सही हमारा मामूल बनाए। और फिर खैर, जहाँ तक तहारत हासिल करने का सवाल है, तो बहुत सारी रिवायात से पता चलता है कि हमें इसके ऊपर भी बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, कि अगर कोई बंदा जब टॉयलेट भी जाता है तो उसे चाहिए कि वाला ला तस्तकबिलुल किबला वला तस्तबदिरुहा, कि टुवर्ड्स किबले की डायरेक्शन में वो कज़ाए हाजत से फारिग ना हो, ना ही अपनी बैक किबले की तरफ करे, बल्कि ऐसे डायरेक्शन में टॉयलेट बनाने चाहिए और ये उनका इस्तेमाल होना चाहिए जो किसी थर्ड किबले की डायरेक्शन में ना फ्रंट हो और ना पीठ हो, इंसान की बैक हो। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जब हम ये रिवायात पढ़ते हैं, क्योंकि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मरतबा किसी कफ़ार ने कहा कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें हर चीज़ की तालीमात दी हैं, यहाँ तक कि भी टॉयलेट जाने की भी तालीमात दी हैं। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े प्राउड तरीके से कहा कि हाँ एग्जैक्टली उन्होंने हमें बताया कि वाट आर द डूज़ एंड डोंट्स ऑफ इवन यूजिंग द बैतुलखला, इवन यूजिंग द टॉयलेट या रेस्ट रूम, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसके अंदर एक एक चीज़ की इंस्ट्रक्शंस और डूज़ एंड डोंट्स और हिदायत मौजूद हैं। तो इसी तरह हमें इवन टॉयलेट जाने की भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और फिर आगे यही फरमाया कि जब कोई बंदा टॉयलेट भी जाए तो उसे चाहिए कि वो डायरेक्शन अपना किबले की तरफ ना करे या बैक भी किबले की तरफ ना करे। और दूसरी चीज़ फिर फरमाई कि राइट हाथ से पाकी हासिल ना करे बल्कि लेफ़्ट हाथ यूज़ करे, जो अमूमन आम तौर से मुसलमानों में रिवाज भी है। और फिर ये कि कम से कम एटलीस्ट अगर पानी नहीं यूज़ कर रहा तो एटलीस्ट ज़्यादा पत्थरों को इस्तेमाल करे, अपनी सही तरह से पाकी हासिल करे, कोई गंदगी उसका आसार उसके जिस्म पे ना रहे। बहरहाल एक रिवायत से ये पता चलता है कि अफजल ये है कि बंदा बाकायदा पानी से वॉश करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रिवायत से हमें यही पता चलता है, यही मामूल था, उनके सामने पानी उन्हें दिया जाता था, वो पानी से वॉश करते थे प्रॉपरली, एंड देन ही यूज़ टू वॉश हिज हैंड्स बाकायदा मिट्टी से। उस ज़माने में जाहिर है आजकल के ज़माने के हैंड सोप्स या हैंड वॉशेज़ तो मौजूद नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट मिट्टी से जो भी उस ज़माने का पाकी हासिल करने का तरीक़ाकार था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उससे हाथ धोया धोकर सही मानों में हाथों को वॉश किया करते थे। फिर एक चीज़ ये ज़ाहिर है ये भी पता चलती है, जैसे कि कुबा की वादी से वालों से जो वहाँ के लोग थे उनके बारे में एक मरतबा एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन लोगों से कहा, ए अंसार वालों तुम लोग ये बताओ कि तुम्हारी वो कौन सी ऐसी आदत है जिसके बारे में अल्लाह ने तुम्हारे लिए इतना अज़मत का एक बयान फरमाया कुरान पाक में सूरह तौबा के अंदर जो आता है, फ़ी रिजाल युहिब्बून अन यतत्ताहरू वला युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन मुतत्ताहिरीन, कि इस बस्ती में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा पाकीज़गी हासिल करते हैं, और अल्लाह जो है इनसे पाकीज़ा ऐसे तहारत वाले लोगों से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, तो ऐसी क्या वजह है? तो उन्होंने यही कहा, या रसूल अल्लाह हम लोग बाकायदा पानी से अपने आप को वॉश करते हैं टॉयलेट यूज़ करने के बाद, और बाकायदा नहाते हैं अगर हमें कोई गुस्ल जनाबत हो जाए, तो इस वजह से गालबन प्रॉब्ली हमारे लिए पाकीज़गी की इतनी वो बयान हुई। तो ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आई, और यही अफजल है कि बाकायदा पानी से वॉश करके अपने आप को सही तरह से तहारत हासिल की जाए। और ज़ाहिर है फिर ऐसी सही चीज़ों में सफाई का ख़ास ख्याल रखना और सही तरह से प्रॉपरली फिर फ़्लश करना टॉयलेट यूज़ करने के बाद, इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। एक रिवायत में ये भी आता है कि इत्तकुल लिल्लाइनीन لائنین سے بچو. اور یہ صحابہ نے پوچھا یا رسول، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کون ہے، لائنین سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الذی یتخلی فی الطریق الناس یہ فی ظلہم، یہ لوگوں کے راستوں میں اور درمیان میں ادھر ادھر قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچو. یعنی کہ بہت ہی بڑا جرم ہے کسی کو دوسروں کو تکلیف دینا. تو اسی کے حکم میں پھر باقاعدہ ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد اسے فلش کرنا بھی از ویری امپورٹنٹ، بیکاز آپ انسان کی پاکی کے اندر یہ بھی اس پاکی کا ہی ایک جز ہے کہ گندگی اپنی چھوڑی نہ جائے. بہرحال پھر یہ ہے کہ دوسری چیز باقاعدہ اپنی پردے کا انتظام ہے، کسی کے سامنے اوپن ایئر میں نہ جایا جائے، یا ٹوائلٹس جا رہے ہیں تو ٹوائلٹس کو لاک ہوں، دروازے ہوں. اور ان کے بارے میں بھی کافی زیادہ ڈیٹیل ہمیں بہت ہی انسٹرکشنز ملتی ہیں شریعت کے اندر. اور ان شارٹ بہرحال ایک دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمائی کہ جب بھی کوئی بندہ ٹوائلٹ جانے لگے تو وہ غفرانہ کا کہا کرے. یا ایک دوسری روایت میں آتا ہے الحمدللہ الذی عذب عن العذاب عافانی کی دعا کر کے ٹوائلٹ میں جایا کرے. یعنی ایون ٹوائلٹ جاتے ہوئے بھی پہلے الحمدللہ الذی، اللہ کی پاکی بیان کی، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اذهب عن العذاب عافانی، یہ جو عزا یعنی کہ اذیت یعنی گندگی ہے میرے جسم کی، اس سے مجھے عافیت عطا فرما. اس کے لیے دعا کر کے ہی ٹوائلٹ جانا چاہیے. بہرحال ان شارٹ طہارت ایسی ایک چیز ہے جو صرف نماز ہی کے لیے نہیں بلکہ جنرل لائف میں بھی بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے، اور باقاعدہ ایمان کا ایک جز ہے جس کے بارے میں تمام کی تمام جو باؤنڈریز ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، بلکہ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان پاک صاف رہے اور طہارت کو خاص طور سے بہت سیریسلی لے، کیونکہ اسی کے اوپر خدا نخواستہ عذاب قبر بھی موقوف ہو سکتا ہے. تو اس لیے پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو گندگی سے بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو طہارت کے صحیح معنوں میں جو حق ہے طہارت کا وہ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.